विभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अतुलितबलधाम हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन आनंद कंद लोकाभिराम मनोभिराम नयनाभिराम सर्वाभिराम अकाम काम आप्त काम सर्व काम सत्य काम भगवान श्री राम के पावन श्री चरणारविंदों में अनंतानंत ब्रह्मांडों के अनंतानंत प्राणियों की ओर से अनंतानंत कोटिशह सादर प्रणाम। भगवान को अपने हृदय में दोलायमान करते हुए समस्त संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में अनेकानेक सह भक्तजनों की ओर से अनेकानेक सह सादर प्रणाम। भगवान शंकर के द्वारा कही हुई जगन माता पार्वती के द्वारा सुनी हुई और वेदव्यास जी महाराज के द्वारा लिखी हुई राम कथा में परम आस्था रखने वाले भगवत प्रिय सभी सज्जनों एवं सीता स्वरूपा माताओं बहनों को अपनी ओर से सादर अभिनंदन। भगवान की लीला भगवान के विरोधियों के हृदय को भी प्रभावित करने वाली होती है। रावण के साथ चल रहे युद्ध में रावण कई बार विचार करता है कि वास्तव में मैं जैसा सुन रहा हूं राम वही हूं। 14,000 राक्षसों को मार देने वाला एक योद्धा और वो लंका में आकर निर्भीकता से सेना सहित प्रवेश कर गया, ये भी मामूली बात नहीं है। मेरे यहां तो देव सेना भी नहीं आ सकती, प्रवेश ही नहीं कर सकती। प्रवेश किया है, इतना ही नहीं मेरे साथ युद्ध भी किया है, डटी हुई है और मेरे अनेक अनेक योद्धाओं को ये मार भी रही है। रावण के हृदय में बड़ा भारी भगवान का प्रभाव पड़ा। ऊपर से रावण युद्ध करता है और भीतर से रावण भगवान में भक्ति करता है। भक्ति क्या करता है? भगवान से संबंध जोड़ता है। हम लोग भगवान के साथ प्रेम पूर्वक संबंध जोड़ते हैं तो रावण आदि राक्षस भगवान के साथ द्वेष का संबंध जोड़ते हैं और नतीजा एक ही निकलता है। एक बार महाराष्ट्र से किसी ने कहा कि रावण आदि का उद्धार क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने तो भगवान के साथ द्वेष किया था, फिर कल्याण कैसे हुआ? ये प्रश्न तो पुराना ही है, भागवत आदि में भी आते हैं, पर उत्तर बहुत नया सा लगा। महाराज जी ने उत्तर दिया कि गंगा जी में कभी भी नहाओ, बड़ा पुण्य होता है। चाहे जेठ आषाढ़ की गर्मी में नहाओ और चाहे पोह माह की ठंड में नहाओ, परंतु भगवान के साथ प्रेम पूर्वक संबंध करना है, ये जेठ आषाढ़ में गंगा जी में स्नान करने के समान है। और भगवान के साथ बैर विरोध रखना, द्वेष रखना, ये पोह माह में गंगा जी में स्नान करने के समान है। जेठ आषाढ़ में गंगा जी के ठंडे जल में स्नान करने से बहुत तृप्ति होती है, आनंद का अनुभव होता है, बार बार डुबकी लगाने की इच्छा होती है, और पोह माह में बस एक डुबकी लग जाए वो बहुत है। हिम्मत करके 2-3 डुबकी लगाने में हर किसी के बस की बात नहीं है। और जेठ आषाढ़ में हमको एक सज्जन मिले, 1008 डुबकी लगाते थे, 1008। जोधपुर के सत्संगी थे वो, अब शरीर नहीं रहा। 1008 एक बार में जाते, 1008 बार डुबकी लगा के आते थे। और उस समय में पोह माह के अंदर ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार से भगवान के साथ बैर विरोध करना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। रावण के उस पक्ष में देखें कि बैर विरोध भी किया तो कैसा किया बैर विरोध, कितना लोग समझाते हैं, नाना समझाता है, ये निष्ठा है रावण की, ये रावण की भगवान के प्रति निष्ठा है। प्रेम निष्ठा नहीं है, विरोध निष्ठा, वैर निष्ठा है। रावण ऊपर से और चरित्र करता है, अंदर से रावण की भावना कुछ और है। उन सब बातों का आज बहुत खुलासा हो जाएगा। अब तक की कथा में तो यही सुना कि कुंभकर्ण ने आकर रावण को समझाया और रावण को बताया कि देखो नारद जी ने हमको एक बार समझा दिया था, सावधान कर दिया था कि देवताओं की सभा से आया हूँ और तुम्हारे और हमारे कारनामे से भगवान इस समय में अवतार लेने वाले हैं। देवता लोग बड़े पीड़ित हैं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान अवतार लेने वाले हैं। तो रावण इस बात को सुनता है। देखो रावण कभी भी किसी बात को बीच में नहीं रोकता है। जो भी रावण को भगवान के विषय में बोलने के लिए है सब बात पूरी सुनता है। सुनने के बाद वो अपनी मर्जी का उत्तर देता है, बीच में बात नहीं काटता है। ये एक रावण की विशेषता है, चाहे यहां हो चाहे तुलसीदास जी की रामायण में हो। हनुमान जी महाराज सुंदरकांड के अंदर जब रावण के पास बोलते तो पूरे तीन दोहे पूरे बोल जाते हैं, खूब लंबा भाषण देते हैं। रावण बीच में नहीं बोलता। अंगद के साथ संवाद होता है तो अंगद के साथ संवाद में राम जी की विशेषताओं को बहुत ध्यान से सुनता है। अंगद के चुप होने पर ही वो बोलता है। तो रावण की हार्दिक इच्छा तो भगवान के हाथों से मरने की थी, ये इस प्रकार की संवाद की लड़ियों से पता चलता है। कुंभकर्ण रावण को बहुत सी बातें सुनाकर युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। तो हे पार्वती, वो चलता है तो रस्तों से नहीं चलता है। कुंभकर्ण चलता है सीधा ही चलता है, रस्तों में तो वो मावे ही नहीं, दरवाजों में मावे ही नहीं। और वो परकोटों को ऐसे लांगता है जैसे अपने लोग कोई छोटी छोटी दीवारों को लांगते हो, इतनी इतनी दीवार हो तो यूं लांग जाए, ऐसे कुंभकर्ण परकोटों से यूं लांगता है कदम रखता हुआ। जब वो कदम रख करके और युद्ध मैदान में आया तो बंदर लोगों के बीच में जाकर वो जोर से नाद करने लगा, किलकारियां लगाने लगा और एक ही वार में दोनों हाथों से यूं बंदरों को लेकर यूं मसलने लगा, यूं ले लेकर के मसलने लगा। तो बंदर तो बहुत दुखी हो गए। इधर उधर भगते हुए बंदर कुंभकर्ण के विषय में दुखी होकर राम जी के पास आए और भगवान राम से कहने लगे कि महाराज ये कौन आ गया, जिसको काल बोलते हैं मृत्यु बोलते हैं वो यही है क्या, हाथ में मुद्गर और है। कालांतकम इव, ये कालांतक है, कोई काल को भी निगलने वाला है, मानो साक्षात यमराज ही आ गया हो। वो लात रखता है यूं तो बंदर मर जाए, हाथ यूं करता है तो सेना के हजारों बंदर यूं पड़ जाए, और मुद्गर फैलाता है, मुद्गर से यूं हाथ फैला करके यूं करता है, कितने असंख्य असंख्य बंदर यूं मर जाए। भगवान के पास खड़े हुए विभीषण ने भगवान को प्रणाम किया, कहा कि महाराज ये मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण है, आपके चरणों में प्रीति रखता है, आपकी आज्ञा हो तो एक बार मैं उससे मिल के आता हूं। भगवान ने कहा मिले आओ। विभीषण आकर कुंभकर्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कहता है, मैं विभीषण आपके चरणों में प्रणाम करता हूं भाई साहब, दया करो, आपके मन में मेरे प्रति क्रोध नहीं आना चाहिए कि देखो ये लंका का योद्धा हमारा छोटा भाई आज हमारे विरुद्ध क्यों खड़ा है। मैंने रावण को बहुत समझाया है, अनेक युक्तियों से समझाया है और मैंने उसको कहा है कि आपको ये सीता दे देनी चाहिए, राम मनुष्य नहीं है साक्षात परब्रह्म परमात्मा है और सीता केवल स्त्री नहीं है, ये भगवान की अर्धांगिनी जगन माता लक्ष्मी है, परंतु मेरी बात को न तो वो सुनता है और न ही वो इस बात का आदर ही करता है। उल्टा वो मुझे तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ा, मुझे धिक्कार धिक्कार कहा और लात से मुझे मारा, तो मुझे विवश होकर अपने चारों मंत्रियों के साथ लंका छोड़कर राम की शरण में आना पड़ा। मैं यूं ही नहीं आया हूं भाई साहब, मैंने उसको सुना दिया है कि मैं राम की शरण में जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं उसके कान उसके ध्यान में ये बात लाया न हूं। मैंने खूब अच्छी तरह से रावण को बोल दिया था कि देखो आपने मुझे ठुकरा दिया है, तो अब मेरे लिए राम के अलावा कोई आश्रय नहीं है। जिसको जगत ठुकरा देता है उसके लिए भगवान के दरवाजे खुले होते हैं। ऐसा विचार करके मैं राम की शरण में आया हूं। भाई साहब इस विषय में आपको क्या कहना है? कुंभकर्ण ने देखा कि विभीषण मेरे पास आया है तो कहा ये विभीषण आओ, जीवन के थोड़े से दिन बाकी है, मैं तुमको अपने छाती से लगाता हूं और तुमको आशीर्वाद देता हूं। विभीषण तुम राम जी के चरणों में अनंत काल तक रहो, तुम हमारे कुल के दीपक हो, हमारे कुल की रक्षा राम जी के शरण में जाने से ही होगी। संसार के अंदर एक बहुत बड़ा अपवाद फैला हुआ है कि राक्षस लोग बहुत बुरे होते हैं, राक्षस लोग पापी होते हैं, राक्षस लोग भगवत विरोधी होते हैं, राक्षस लोग ऐसे होते हैं, सब लोग निंदा करते हैं। पर धन्य है विभीषण, तू राक्षस कुल में पैदा होकर आज राम जी की शरण में आया है, तो हम राक्षस लोग ये कह सकते हैं कि हमारा सारा कुल खराब नहीं है। देखो विभीषण भगवान के शरण में गया है, तुम महान भागवत हो। विभीषण हमने तुमको कभी सुनाया नहीं, हमको अकेले में नारद जी ने कई बार कहा कि कुंभकर्ण तुम्हारे वंश में विभीषण बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है। नारद जी ने भी आश्चर्य किया कि विभीषण जैसा भगवान का अनुरागी भक्त तुम्हारे यहां कैसे पैदा हो गया? तब तक तो तुम भगवान की शरण में गए ही नहीं थे, तो भी तुम्हारे आगामी जीवन को उन्होंने पहले ही पहचान लिया होगा, तभी तो उन्होंने तुम्हारी प्रशंसा हमारे सामने गाई है। अच्छी बात है विभीषण, तुम बड़े अच्छे पक्ष में आए हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम रावण से अलग होकर किसी और जगह गए होते? वही आना है जहां सबको आना चाहिए। तुमने जिसकी शरण ली है वो शरण लेने लायक शरण ली है, परंतु विभीषण मेरी एक कमजोरी है, मैं अभी रावण के पक्ष में युद्ध कर रहा हूं, इसलिए कौन मेरा है कौन पराया है मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तुम इस युद्ध के अंदर मेरे सामने मत आ जाना, नहीं तो कहीं तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे तो मैं अपने पश्चाताप से वैसे ही दुखी होकर मर जाऊंगा। मैं तुमको यहां मरा हुआ देखना नहीं चाहता हूं, और मेरे हाथ से मैं तुमको मारूं जो कि मेरे कुल की लाज बचाने वाला है, ये बड़ा भारी मेरे से अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं इस समय में मदोन्मत्त हुआ हुआ हूं, रणोन्मत्त हुआ हुआ हूं, तुम मेरे आंखों के सामने से हट जाओ, मैं तुमको पर्याप्त समय देता हूं। रोते बिलखते विभीषण जी महाराज अपने भाई से विदा होते हैं और राम जी के पास में आ जाते हैं। राम जी महाराज से कहते हैं कि महाराज ये कुंभकर्ण बहुत ही बड़े योद्धा हैं। आपने रावण और कुंभकर्ण दो के विषय में सुना था, ये कुंभकर्ण ये है जो 6 महीने तक सोते हैं और 1 दिन के लिए जगते हैं। यद्यपि इनका अभी जगने का समय नहीं था, स्वाभाविक दिन नहीं आया था, इनको जगाया गया है, अतएव इनके आंखों में नींद भी घुल रही है और ये युद्ध भी किए जा रहे हैं। इधर कुंभकर्ण बंदरों को पकड़ पकड़ करके मसल मसल करके फेंक रहे हैं, जैसे कोई बड़ा भयंकर हाथी आ जाए और वो हाथी आकर के अपने सून में कितनों को लपेट लेता हो, ऐसे ये कुंभकर्ण सबको समाप्त कर रहे हैं। राम जी महाराज बड़े क्रुद्ध होकर के, राम जी महाराज ने अपना एक शस्त्र लिया, बाण लिया और उसको वायव्यास्त्र बनाया और वायव्यास्त्र बना करके और कुंभकर्ण की ओर फेंका। उस समय कुंभकर्ण अपने हाथ के अंदर मुद्गर लिया हुआ बंदरों की सेना में उसको यूं घुमा रहा था, तो दाहिने हाथ से घुमा रहा था तो भगवान ने वो अस्त्र छोड़ा, वो अस्त्र से उनकी दाहिनी भुजा कुंभकर्ण की कट गई। और जिस समय वो भुजा दूर जाकर के गिरी तो उस भुजा के नीचे जितने बंदर आए थे वो सारे के सारे बंदर उसी में ही मर गए। सब बंदर अब दौड़ करके राम जी के पास खड़े हो गए और राम जी का और कुंभकर्ण का आपस का युद्ध देखने लगे। एक हाथ कट जाने के बाद भी कुंभकर्ण के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, उसको ऐसा लगा जैसे कोई विशाल वृक्ष की कोई छोटी सी टहनी टूट जाती हो। उसने अपने बाएं हाथ से एक साल वृक्ष उखाड़ा और उखाड़ करके राम जी की तरफ वो मारने के लिए दौड़ा, तो राम जी ने दूसरे हाथ को भी, बाएं हाथ को भी ऐन्द्रास्त्र से काट दिया। अब दोनों भुजा उसकी कट गई। तब भी कुंभकर्ण बड़े जोश होश दमखम के साथ राम जी की ओर मुंह फैलाता है और दौड़े दौड़े आता है, हाथ में शस्त्र तो नहीं है फिर भी वो दौड़े दौड़े आता है। तब राम जी महाराज ने उसको अपना दो अर्ध चंद्र बाण लेकर के उसके पैरों पर यूं डाले, द्वौ अर्ध चंद्रौ निशितौ आदायस्य पदद्वयम्, दोनों पैर के ऊपर भगवान ने यूं बाण लगाए, दोनों पैर कट गए और दोनों ही पैर लंका के दरवाजे पर जाकर के गिर गए। अब उसके दोनों भुजा कट गई, दोनों पैर कट गए। तब भी वह मुंह खोला हुआ, वडवा मुखवद वक्त्रम व्यादाय रघुनंदनम, राम की तरफ यूं जैसे सर्प चलता है यूं ही चल रहा है, मुंह फाड़ा हुआ है। तो उस समय राम जी महाराज ने उसके मुख के अंदर अपने तीखे तीखे बाण थे वो मुंह के अंदर बाण भर दिए। तो जिस समय वो मुंह खोल करके राम जी की तरफ आ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई राहु चंद्रमा की तरफ दौड़ता हो। अब उसका मुंह पूरा भर गया। मुंह भर जाने के बाद भगवान ने एक तीक्ष्ण बाण से उसके गले के ऊपर प्रहार किया, तब उसका जो ये सिर भाग था वो तो जाकर लंका के दरवाजे पर पड़ गया और जो धड़ भाग था वो धड़ भाग जाकर के समुद्र में गिर गया। समुद्र में गिरने पर वहां कई मगरमच्छ वगैरह उसके धड़ से वहीं पर मर गए और लंका के दरवाजे पर जाकर के जब उसकी मुंडी गिरी तो ऐसा लगा कि दरवाजे पर कोई पहाड़ आ गया हो। जब कुंभकर्ण के ऐसे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, भुजा भुजा हो गई, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, पैर अलग हो गए, तब देवताओं को पता चला कि अब कुंभकर्ण मर चुका है। तब उन्होंने बड़े उत्साह के साथ धुंधुबियां बजाई और भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की। मुनीश्वर नारद जी महाराज उस समय दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान श्री राम के पास युद्ध के मैदान में आए। राम का बड़ा विलक्षण रूप देखा, इंदिवर श्यामम, नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले, धनुष को धारण करने वाले और ईषत ताम्र विशालाक्षम, मोटी मोटी आंखें जिनके अंदर थोड़ी थोड़ी क्रोध से ललाई आई हुई है और ऐन्द्रास्त्र को अपने भुजाओं में लिए हुए, दया की दृष्टि से सब बंदरों को देख रहे हैं, ऐसे भगवान की शोभा देखकर नारद जी महाराज आए। यो शोभा देखते देखते मानो वो अपने आंखों से अब राम जी को पी जाएंगे, आनंद में डूब करके स्तुति करने लगे। देव देव जगन्नाथ परमात्मन सनातन नारायणाखिलाधार विश्व साक्षिन नमोस्तुते। नारद जी महाराज कहने लगे कि हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे परब्रह्म परमात्मन, हे अखिल अखिलाधार, हे विश्व के साक्षी, हे विज्ञान स्वरूप परब्रह्म परमात्मन, क्या आप लीला कर रहे हो? देखो, रावण आदि को तो आप एक योद्धा की तरह दिखते हो और हम लोगों को आप युद्ध करते हुए भी साक्षात परब्रह्म परमात्मा लगते हो। अज्ञानियों को आप इस समय रोते बिलखते से दिखते हो, सामान्य आदमियों की तरह से दिखते हो, जैसे और आदमी सुखी दुखी होते हैं ऐसे दिखते हो, और हमको आप सुखी दुखी अवस्था में भी परब्रह्म परमात्मा ही दिखाई देते हो। माया से आप संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हो, पर देखने वाले लोग ही देख पाते हैं, नहीं देखने वाले नहीं देख पाते। जैसे गले के अंदर रहने वाली माला है, उसको असावधान व्यक्ति नहीं देख पाता कि मेरे गले में माला है क्या, वो देखता है मेरी माला तो कहीं घूम गई, कोई कहे यही माला है क्या, करे यही है, यही है, यही माला है। ऐसे ही आप सबके हृदय में विराजमान, लेकिन पता नहीं चलता है लोगों को। आप जब नेत्र खोलते हैं तो सृष्टि बनती है, और जब आप नेत्र बंद करते हैं तो सृष्टि का विलय हो जाता है। ऐसे पलक के खोलने और बंद करने से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं, और बंद करने से अनंत ब्रह्मांड लीन होते हैं। जैसे आदमी गहरी नींद में रहता है उस समय में वो संसार से अलग हो जाता है, और नेत्र खोलता है तो उसके सामने संसार दिखाई देता है। आपके अंदर ही सारा चर आचर जगत विद्यमान है, और आपके अतिरिक्त संसार नाम की सत्ता है ही नहीं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। बड़े बड़े मुनियों ने आपको काल रूप से जाना है, पुरुष रूप से जाना है, व्यक्त रूप से जाना है, अव्यक्त रूप से जाना है, अलग अलग नाम से जानते हैं आपको। कोई कहते हैं ये काल भगवान है, कोई कहते हैं प्रकृति है, ये भगवान की माया, भगवान से अलग नहीं इसलिए ये भी भगवान है। कोई कहते हैं कि चेतन है, ये भगवान है। कोई कहते हैं कि भगवान अव्यक्त रहते हैं, कोई कहते हैं कि व्यक्त अव्यक्त सब कुछ ही भगवान है। सब कुछ भगवान है, मिट्टी के बर्तनों में जैसे सब कुछ मिट्टी मिट्टी होती है। कोई कहते हैं ये परात है, ये घड़ा है, ये तवा है, कोई अलग अलग नाम देते हैं, वो मिट्टी के ही नाम। ऐसे ज्ञानी महात्माओं ने सब नामों के अंदर, सब रूपों के अंदर आप ही को देखा है। बड़े आश्चर्य की बात है महाराज, वेद कहते हैं कि भगवान विकार रहित है, निर्विकार है, और वो ही वेद ये भी बोलते हैं कि संसार की जितनी आकृतियां हैं ये भी भगवान है। तो ये आकृतियां तो बदलने वाली है, विकारवती आकृतियां हैं, और भगवान निर्विकार है। तो निर्विकार है तो विकारवान कैसा, विकार है तो निर्विकारवान कैसा, ये विरोध दिखता है। परंतु इस विरोध का परिहार आपकी कृपा के बिना नहीं होता है। ये दो बातें क्यों बोलती है श्रुतियां? इसलिए बोलती है कि अज्ञानियों की दृष्टि में दो चीज है, एक भगवान है, एक संसार है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक दो दृष्टि बनानी भी चाहिए। दो दृष्टि बनाए बिना आप एक तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसलिए दो दृष्टि बनाने के लिए दो दृष्टि बनाई, और दो दृष्टि बना करके और फिर एक में स्थित किया जाता है, इसलिए दो विरुद्ध बातें कही जाती है। बताया ना कि बच्चा बोलता है कि माँ ये तो घड़ा है, ये तो डेस्क है, लकड़ी बताओ लकड़ी कहाँ है। तो लकड़ी और डेस्क, तो अज्ञानी को बताया जाएगा कि देखो लकड़ी से डेस्क बनती है। अब अज्ञानी आदमी को डेस्क से ज्यादा काम पड़ता है बोलने का, और ज्यादा इसको बैठ लिखो करो ये ज्यादा काम आती है। तो उस समय अज्ञानी आदमी इसको देख करके और ये डेस्क का प्रयोग ज्यादा करेगा, उपयोग ज्यादा लाएगा, केवल लकड़ी क्या काम आती है। लेकिन जब समझते ये कैसे बनता है भाई, कि भाई ये तो काष्ठ से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ है, तो फिर ये क्या है, ये तो लकड़ी है। तो लकड़ी है तो फिर हम इसको डेस्क, डेस्क तो व्यवहार के लिए बोलते हैं क्योंकि यावन मात्र लकड़ी की बनी हुई चीजें लकड़ी है। अच्छा ये व्यवहार के लिए है, ये किवाड़ है, ये डेस्क है, ये कुर्सी है, ये सब व्यवहार के लिए। असल में क्या है कि साहब असल के अंदर तो ये सब लकड़ी है। तो दो बात कहने से एक बात पर हम टिक जाते हैं, ऐसे ही अज्ञानियों को समझाने के लिए दो बात कही जाती है कि भगवान निर्विकार है और जगत विकार वाला है। परंतु अंत में जब वो एक तत्व पर निर्णय कर लेता है तब वो विकार और निर्विकार दोनों में भेद नहीं मानता, एक भगवान ही है। पर ये बात आपकी कृपा के बिना समझ में नहीं आती है। माया से आप कैसी लीला करते हैं, पर हर आदमी को ये बात समझ में नहीं आती। जैसे भयंकर गर्मी के अंदर सूर्य की किरणें हैं, उनके अंदर पानी दिखता है, वो भ्रम से दिखता है। ऐसे ही आपके अंदर भ्रम से ही दिखता है कि भगवान भी शोक करते हैं, भगवान भी रोते हैं, भगवान भी स्त्री के लिए रोते हैं, भगवान भी भाई के लिए रोते हैं। कहते हैं देखो रामचरितमानस में लक्ष्मण के बाण लगा, क्या राम जी रोए हैं, ओहो रोते रोते राम जी इतने अचेत हो गए कि निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण आधारा, उनको बोलने का ही होश नहीं रहा। पिता वचन मनते हु नहीं, ओहो यदि मुझे पता चलता कि राम जी इस प्रकार से वन में जाएंगे, लक्ष्मण मेरे साथ जाएगा और वो मारा जाएगा, तो मैं पिता के वचन भी नहीं मानता। जो राम जी कहते हैं कि मैं पिता के लिए लक्ष्मण का त्याग नहीं, राज्य का त्याग कर सकता हूँ और सीता का त्याग कर सकता हूँ, कौशल्या का त्याग कर सकता हूँ, सबका त्याग कर सकता हूँ मैं पिता के वचनों के लिए, वो राम जी कहते हैं पिता वचन मानते हो नहीं, ओ मैं वो वचन नहीं मानता। ये क्या है, ये देखो राम जी भी हमारे समान सुखी दुखी होते हैं। ये बात कौन लोग बोलते हैं, जो लोग आपके माया तत्व को नहीं समझते हैं, भ्रांति ज्ञानात तथा राम है, भ्रांति ज्ञान से बोला करते हैं। हे प्रभु आप ही दृष्टा है और आप ही दृश्य है, ये बात कैसे लोगों के समझ में आती है। देखने वाले भी आप हैं और दिखाई देने वाला भी आप हैं, मारने वाले भी आप हैं और मरने वाले भी आप हैं, संसार का पालन करने वाले भी आप हैं और पालित होने वाले भी आप हैं, और पैदा करने वाले भी आप हैं और पैदा होने वाले भी आप हैं। इस बात को हर आदमी समझ नहीं सकते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो आपको समझने की कोशिश नहीं करते कि भाई भगवान को समझ तो सकते नहीं, इसलिए जो भी रूप आपका अच्छा लगता है उसमें वे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। भजंती बुद्धि संपन्ना, बुद्धि संपन्न व्यक्ति होते हैं वो केवल आप में प्रेम करते हैं, भजन करते हैं, और वो देखते हैं कि बाबा भगवान चाहे जैसे हो, अपने को तो भगवान से अपना काम बनाना चाहिए। क्या कि काम क्रोध लोभ आदि जो अनेक जो लुटेरे हमारे इस मार्ग में आए हुए हैं, हमको डराते रहते हैं, जैसे बिलाव चूहे को डराता है ऐसे हमको डराते रहते हैं। इस प्रकार से काम क्रोध आदि से हमारा पिंड छूटे तो वो डरते डरते हरदम राम 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 डरते डरते नाम लेते हैं। सज्जनों, एक संत थे, वो कभी कोई उनका अपमान करता और क्रोध आता है ना तो वो वापस क्रोध नहीं करते, राम 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 जोर जोर से राम राम बोलते। पूछते क्या हो गया? कि कुछ नहीं, कुत्ता आ गया था, कुत्ता आ गया, हमने भगा दिया। समझने वाले समझे, न समझने वाले नहीं समझे। समझने वाले समझाते कि बाबा जी को क्रोध आ गया, अतएव बाबा जी ने जो है जोर जोर से राम राम किया। तो त्वन्नाम स्मरताम नित्यम त्वद रूपम अपि मानसे, तुम्हारे रूप का हरदम अपने मन के अंदर चिंतन करते हैं, नाम का स्मरण करते रहते हैं और आपकी कथा मृत का पान करते रहते हैं, केवल इसलिए कि भाई इस संसार से पार होने के लिए हमको किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता है और हमारी सहायता केवल भगवान ही कर सकते हैं। अतः आपके भक्तों का जो संग करने वाले पुरुष हैं उनके लिए संसार से पार होना कोई मुश्किल नहीं। गाय का खुर है उसको जैसे लांघना आसान, ऐसे भवसागर से पार होना आसान। जो भक्त लोग होते हैं वो सगुण रूप से आपकी लीला करते हैं, लीला सुनते हैं, ध्यान करते हैं, और जो आपकी लीलाओं के अंदर पूरा ज्ञान नहीं रख पाते वे अपने आत्म चिंतन के द्वारा भवसागर से पार होते हैं। हे प्रभु, आज मैं कुंभकर्ण को मार करके कितना विलक्षण काम किया है, पृथ्वी का भार हल्का कर दिया प्रभु, कुंभकर्ण का मारा जाना, अब मेघनाद मारा जाएगा और फिर रावण मारा जाएगा, हम लोग आकाश में आपका बराबर ये युद्ध कौशल देख रहे हैं महाराज। ऐसा नहीं कि देवता कोई आपको स्वर्ग में बैठे हुए आपको भूल गए हो, सब देवता लोग आकाश में बैठे हैं। अब महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं देवताओं के बीच में जाता हूँ, यहाँ आपकी शोभा लेकर उनको वहां सुनाता हूँ और वहां के समाचार आपको सुना देता हूँ। नारद जी महाराज वहां से रवाना होकर देवताओं से भी पूजित होकर ब्रह्म लोक में जाकर ब्रह्मा जी को कथा सुनाते हैं। देखो नारद जी को कथा सुनाने में बड़ा आनंद आता है। तो नारद जी महाराज ब्रह्मलोक में गए, ये बात तो इधर हो गई, अब लंका में चलते हैं। कुंभकर्ण की मृत्यु को सुनकर के रावण शोक संतप्त हो गया और उस समय में राम के पराक्रम को अपने मन में बसाया हुआ वो डर गया और मूर्छित हो गया। बार बार खड़ा होता है फिर गिर जाता है, खड़ा होता है फिर गिर जाता है। अपने पिता को शोकग्रस्त देख करके मेघनाद उनके पास आकर कहने लगे, पिताजी जब तक मैं जीवित हूं तब तक कोई भी मरे जिए आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं बैठा हूं ना, कोई दुख का अवसर नहीं है प्रभु, आपने देवताओं पर विजय प्राप्त की है, मैंने इंद्र को कैद खाने में डाला है, उस पराक्रम को याद कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। चाचा कुंभकर्ण जी तो प्राय करके 6 महीने सोते रहते थे, अतः उनको नींद आ गई होगी तो बाण लगा दिया होगा, राम ने मर गया होगा। मैं तो बड़ा जागरूक हूं और इतना ही नहीं है, मैं तो अब निकुम्बिला क्षेत्र में जाकर अनुष्ठान करके और नई शक्ति नई ऊर्जा प्राप्त करूंगा, फिर मैं राम को परास्त कर दूंगा, राम मेरे सामने टिक नहीं सकेंगे, क्योंकि उस अनुष्ठान के बल पर मुझे नया नया रथ मिलेगा, दिव्य रथ मिलेगा, दिव्य घोड़े मिलेंगे और दिव्य मुझे शस्त्र मिलेंगे, उससे मैं अपना जो है ये युद्ध जीत लूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कह करके और पिता से आज्ञा लेकर वहां से रवाना हुआ। रवाना होकर निकुम्बिला क्षेत्र में चला गया, लाल कपड़े पहन लिए, एकदम लाल लाल ही उसने माला पहन ली। देखो कई कई अनुष्ठान में लाल कपड़े पहने जाते हैं, कई ऐसे अनुष्ठान होते हैं उनमें लाल कपड़ा एकदम लाल, इसलिए संतों के यहां पर गहरू वस्त्र पाना जाता है, गहरू ये गहरू वस्त्र है, गहरू वस्त्र में गहरू रंग में क्या होता है, पूरा लाल नहीं होता, आग की जो लौ होती है उस लौ जैसे संत कपड़ा पहनते हैं, ये आग के लौ का कपड़ा है कि ये इस ऐसा क्यों पहनते हैं? ऐसा इसलिए पहनते हैं कि हरदम इस लौ को देख करके हम लोग विचार करें कि भाई ऐसा ये आग है ना, ये आग की लौ है, आग में ही हम बैठे हुए हैं, ये शरीर एक दिन आग में जाएगा, आग में ये शरीर जलेगा, आग में शरीर जलेगा अर्थात संसार के अंदर काल रूपी अग्नि लगी हुई है, ऐसा देखकर इसमें मोहित नहीं होना चाहिए। हम लोग तो भाई ये कपड़ा पहनते हैं, इसमें भी शौकी नहीं लगाते, अरे ये तो बड़ा वैराग्यवान कपड़ा है भाई, इसमें भी हम शौकी नहीं लगाएंगे, नए नए ढंग से हम डिजाइने बनाएंगे, नए नए ढंग से इसकी कटिंग करके पहनेंगे। वास्तव में ऐसी बात नहीं। और एकदम लाल कपड़ा होता है, वो एकदम लाल कपड़ा कोई आभिचारिक आदि क्रियाएं होती है, किसी को मारने के लिए, एक मूड चलाने के लिए, एक और के लिए कोई ऐसा अनुष्ठान होता है उसमें पहने जाते हैं। अस्तु, तो वो लाल कपड़ा पहन के एक तरह से ये आभिचारिक क्रिया ही थी। तो वो निकुम्बिला क्षेत्र में जाकर के हवन करने लगा, वहां सब चीजें लाल होती है, लाल ही पुष्प होते हैं, लाल ही ये सब होते हैं सब। तो निकुम्बिला क्षेत्र में चला गया। विभीषण को किसी न किसी प्रकार से गुप्तचरों से पता चल गया कि ये मेघनाथ निकुम्बिला क्षेत्र में गया है। तो वो राम जी के पास आया और राम जी के पास आकर के कहने लगा, महाराज मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि रावण पुत्र मेघनाथ निकुम्बिला क्षेत्र में जाकर एक बहुत बड़े होम का शुभारंभ कर चुका है, और यदि वो यज्ञ समाप्त तो हो गया तो उस दुष्ट मेघनाथ का वध अपने में से कोई नहीं कर सकेगा, वो अजेय हो जाएगा, सारे देवता मिल जाए, सारे असुर मिल जाए, तब भी उसका वध नहीं हो पाएगा, ऐसा वो जो है इसका ये अनुष्ठान होगा। अतः शीघ्रम लक्ष्मण ने, आप जो है मेरे साथ लक्ष्मण को भेजिए, और लक्ष्मण को भेज करके इसका हम वध करना चाहते हैं रावण पुत्र मेघनाथ का, आप आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण बलवानों में श्रेष्ठ है, वो मेघनाथ को जरूर मार देगा, आप जो है लक्ष्मण को मेरे साथ भेजिए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण को क्यों भेजो भाई, लक्ष्मण पहले ही एक दो बार घायल हो चुका है और लक्ष्मण ने बहुत युद्ध किया है, मैं चलता हूं, हनिष्यामी, मैं जाऊं मैं मार दूंगा उसको, और मेरे पास आग्नेयास्त्र है, वो आग्नेयास्त्र एक पर्याप्त है, वो सारे जमीन में सब जगह आग लगा देगा, उसके रक्षक उसके और लोग सब उसके अंदर जल करके खत्म हो जाएंगे। विभीषण ने कहा, महाराज आप तो सर्वसमर्थ हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, परंतु धृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा, ये लक्ष्मण के बिना नहीं मरेगा। जो व्यक्ति 12 बरस तक नींद नहीं लिया हो और जिसने 12 बरस तक निराहार होकर के जीवन व्यतीत किया हो, उसी व्यक्ति के द्वारा इस मेघनाद की मृत्यु होगी, ये ब्रह्मा जी ने इसके ललाट पटल पर लिख दिया है। लक्ष्मण जी अपने में से, इतने में से एक लक्ष्मण जी ही ऐसे हैं। जब मैं आपकी शरण में आया था तब मैं बैठा बैठा करता क्या हूं, आप ही की कथा सुनता रहता हूं बंदरों से, वो बंदर बताते हैं मुझे, कभी हनुमान जी तो कभी सुग्रीव जी तो कभी कौन, कि ऐसे आपका जन्म हुआ, ऐसे विश्वामित्र जी के साथ गए, ऐसे सीता जी के साथ विवाह हुआ, ऐसे माता केकई ने वरदान मांगा, ऐसे पिताजी ने आप दो वरदान दे दिए, और लक्ष्मण जी जब आपके साथ चले तब से निराहार होकर के आपकी सेवा करते हैं। तदादि निद्राहारादि न जानाति रघुत्तम, तब से ये नींद क्या होती जानता नहीं है, भोजन क्या होता है जानता नहीं, केवल रात दिन आपकी सेवा करता है, ये सब मैंने ज्ञात कर लिया है। इसलिए देरी मत कीजिए महाराज, लक्ष्मण जी को जल्दी से जल्दी भेजिए और महाराज आपकी कृपा से मुझे सब बातों का ज्ञान हो गया कि इस जगत को धारण करने वाले शेष रूप आप ही हो और आप ही लक्ष्मण के रूप में हो। आप कहते हो मैं जाऊं, महाराज आप जाओ चाहे लक्ष्मण जाओ, वो आप ही हो, आप ही का रूप लक्ष्मण है। त्वमेव साक्षात जगताम अधीश है, आप ही तो जगत के अधीश्वर हो, आप ही लक्ष्मण हो, आप ही शेष हो, आप दोनों ही यहाँ वज्जटा वल्कल वस्त्र धारण किए हुए यहाँ केवल नाटक कर रहे हो, जगन नाटक सूत्र धारो, आप तो सृष्टि की बड़ी भारी सेवा करने के लिए आए हो, इसलिए लक्ष्मण जी को भेजिए। विभीषण के वचनों को सुनकर के राम जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, विभीषण मैं मेघनाथ की माया को खूब अच्छी तरह से पहचानता हूं और उसकी कौन सी माया का कैसे उत्तर दिया जाता है इसको भी खूब अच्छी तरह से जानता हूं। वो ब्रह्मास्त्र को भी जानने वाला है और बड़ा मायावी भी है। ब्रह्मास्त्र को जानना और फिर माया फैलाना, ये दोनों कला उसको आती है। और मैं लक्ष्मण को भी जानता हूं, लक्ष्मण में कितना बल है, लक्ष्मण क्या है, ये मैं भी लक्ष्मण के स्वरूप को भी मैं जानता हूं। ज्ञात्वैव आसम अहम तूष्णीम, भविष्यत कार्य गौरवात, आगे कितना बड़ा काम करना है ये समझ करके मैं चुप हो जाता हूं और तुम लक्ष्मण को लेकर के मेघनाथ के साथ युद्ध करो।